भागवत सार की श्रृंखला में दसवें स्कंद के 59वें अध्याय पर चर्चा है, जिसका शीर्षक है भौमासुर का उद्धार। इसके पहले श्लोक को दोहराएंगे आप सब कहें। श्री राजुवाच यथा हतो भगवता भौमो येनेचता स्त्रियः निरुद्ध एतदाचक्ष्व विक्रमं शारंगन्वनः। श्रीराजोवाच यथा हतो भगवता भौमो येनेचता स्त्रियः निरुद्धये तदाचक्ष्व विक्रमं शारंगन्वनः। श्रीराजोवाच यथा हतो भगवता भौमो येनेचता स्त्रियः निरुद्ध एतदाचक्ष्व विक्रमं शारंगन्वनः। श्री राजोवाच, राजा परीक्षित ने कहा यथा कैसे हतः मारा गया भगवता भगवान द्वारा भौमः नरकासुर भूमि या पृथ्वी देवी का पुत्र येन जिसके द्वारा च तथा ता वे स्त्रियः स्त्रियां निरुद्धः बंदी एतत् यह आचक्ष्व कहिए विक्रमं शौर्य। शारंग धन्वनः, शारंग धनुष के स्वामी कृष्ण का। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, राजा परीक्षित ने कहा अनेक स्त्रियों का अपहरण करने वाला भौमासुर किस तरह भगवान द्वारा मारा गया, कृपा करके भगवान शारंग धन्वा के इस शौर्य का वर्णन कीजिए। हरे कृष्णा। भागवतम में भगवान की द्वारका लीला दसवें स्कंद में उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वृंदावन लीला, मथुरा लीला और अब द्वारका लीला। तो जब भगवान द्वारका में रह रहे हैं, पिछले अध्याय में हम लोगों ने सुना कि सुखदेव गोस्वामी भगवान के और 5 विवाहों का वर्णन करते हैं और फिर अंत में केवल कह देते हैं कि फिर श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध करके 16,100 और अन्य राजकुमारियों से विवाह किया। तो तब इस अध्याय के प्रारंभ में परीक्षित महाराज का प्रश्न है तो इस अध्याय के प्रारंभ से लेकर करीब 22 श्लोक तक भौमासुर के वध का वर्णन है। फिर 23वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक वर्णन है किस प्रकार भूमि देवी ने बड़ी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं भगवान को अर्पित की। 33वें श्लोक के आगे वर्णन है कैसे भगवान ने प्रवेश किया महल में और 16,100 राजकुमारियों को फिर द्वारका भेजा। 38वें श्लोक से आगे वर्णन है कि कैसे श्री कृष्ण फिर स्वर्ग जाते हैं और कैसे वहाँ पारिजात वृक्ष को लेकर आते हैं, और अंतिम विभाग इसका है जहाँ 42 से 45 श्लोक तक वर्णन किया गया है कि किस प्रकार श्री कृष्ण विवाह करते हैं 16,100 राजकुमारियों से और कैसे उनका पारिवारिक जीवन चलता है। तो इसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, जैसे हम लोग इस श्लोक में पढ़ रहे थे, कि कैसे मारा, कैसे वध किया भौमासुर का, जिसने इतनी सारी राजकुमारियों को बंदी बनाकर रखा था। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी ये कथा कहना प्रारंभ करते हैं। दरअसल एक समय जब भगवान द्वारका में थे तो इंद्र द्वारका आए, और इंद्र आए थे एक शिकायत लेकर। तो इंद्र ने कहा कि भौमासुर नाम का ये जो असुर है, इसने मेरी माता अदिति के कानों के कुंडल चुरा लिए हैं। कितने शर्म की बात है ना, इंद्र राजा है, देवताओं के राजा, और एक असुर जाकर उनकी माँ के कान के कुंडल चुरा लेते हैं, और ये आके कृष्ण को कंप्लेन कर रहे हैं। तो कृष्ण को कहते हैं कि मेरी माता के कानों के कुंडल चुरा लिए हैं, वरुण देव का जो आसन है उस आसन पर एक छत्र लगा होता है, वो छत्र चुरा लिया है, और इतना ही नहीं मंदार पर्वत पर या मेरु पर्वत पर जो हमारे आखे हमारे आनंद लेने का स्थान है जिसको मणि पर्वत कहते हैं, तो वो मणि पर्वत भी उसने ले लिया है। तो बड़े आश्चर्य की बात है। अब ऐसा सब कहा तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, तो उसने मदद मांगी इंद्र ने कि आप कुछ कीजिए, ये भौमासुर का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। श्री कृष्ण थे द्वारिका में, गुजरात में आता है, और भौमासुर थे प्राग ज्योतिषपुर में जो आसाम में आता है। आज भी आसाम में तेजपुर एक स्थान है, तो वहाँ भौमासुर की राजधानी थी वहीं पास में, उसको प्राग ज्योतिषपुर कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नेपाल में थी, लेकिन आचार्यों ने बताया कि आसाम में थी, पास में ही आता है। तो भौमासुर इस तरह वहाँ पर रह रहे थे प्राग ज्योतिषपुर में। तो जब श्री कृष्ण ने सुना तो तुरंत तैयार हो गए कि ठीक है, मैं जाऊँगा, आपकी मदद करूँगा, मैं भौमासुर के ऊपर आक्रमण करूँगा। तो श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बुलाया, क्योंकि अब रथ से जाना तो संभव नहीं था इतना दूर द्वारका से आसाम। आज भी अगर हम लोग यहाँ से आसाम जाएं तो बहुत समय लग जाता है, तो इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा नहीं तो प्लेन से जाना पड़ेगा, ये अभी रथ नहीं चलेगा। तो इसीलिए उन्होंने गरुड़ जी को बुलाया। तो गरुड़ जी आए, श्री कृष्ण बैठे गरुड़ के ऊपर, और साथ साथ सत्यभामा को भी ले लिया, अपनी पत्नी को भी ले लिया, आओ आप भी चलो। तो आचार्यगण समझाते हैं कि क्यों भगवान ने सत्यभामा को साथ में लिया, कई कारण देते हैं। एक आचार्य कहते हैं कि भगवान एक अच्छे पति की भूमिका निभा रहे हैं, और एक अच्छे पति का कर्तव्य होता है अपनी पत्नी को कभी कभी शॉपिंग के लिए ले जाना। तो भगवान ले गए सत्यभामा को, चलो स्वर्ग में कुछ शॉपिंग करके आ जाना, तो वहाँ से कुछ पारिजात वृक्ष वगैरह वो ले आई। तो एक कारण ये बताते हैं। दूसरा कारण बताते हैं कि सत्यभामा का जो स्वभाव था वो हमेशा कुछ रोचक करना चाहती थी, एडवेंचरस थी बहुत, तो भगवान ने सोचा कि अभी ये महल में रह रहकर इसका कुछ वो जो भाव है वो तो पूरा नहीं हो रहा, तो चलो इसको युद्ध दिखाते हैं ले जाकर। तो युद्ध देखेगी बड़ा रोमांच आएगा, हाँ ये मारा ऐसे किया। तो फिर सत्यभामा को उसके लिए ले गए। और एक कारण बताते हैं सत्यभामा को ले जाने का कि एक बार नारद मुनि द्वारिका आए थे और वो आते आते स्वर्ग से आ रहे थे, तो आते आते एक फूल लेकर आ गए पारिजात का, और उन्होंने श्री कृष्ण को दिया। श्री कृष्ण ने तुरंत, रुक्मिणी बैठी थी, रुक्मिणी को दे दिया। ठीक है, बात समाप्त हो गई। जाते जाते नारद मुनि सत्यभामा से मिलने गए और उन्होंने सत्यभामा से कहा कि देखो, दरअसल श्री कृष्ण आपसे उतना प्रेम नहीं करते हैं जितना रुक्मिणी से करते हैं। सत्यभामा ने कहा, ऐसे कैसे, ये बात कैसे कह रहे हो? उसने कहा, देखिए मैं स्वर्ग से फूल लाया, इतना अच्छा इतना सुंदर फूल था, तो आपको देने की बजाय उन्होंने रुक्मिणी को दे दिया। अब कृष्ण भी बेचारे क्या करते, फूल एक ही था, रुक्मिणी थी पास में, तो दे दिया। तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं दिया। तो ये सुनकर बड़ा क्रोध आ गया सत्यभामा को, और सत्यभामा ने फिर श्री कृष्ण से कहा कि मुझे भी फूल चाहिए। तो श्री कृष्ण जान गए कि ये दोनों पत्नियां हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत उनमें ये प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। तो श्री कृष्ण ने कहा, अरे तुम चिंता क्यों करती हो, एक फूल क्या, तुम्हारे लिए पूरा वृक्ष लेकर आ जाऊंगा। देखिए, अगर कृष्ण कहते हैं तो वो करते भी हैं। आजकल वो एक दूसरे को प्रेम करते हैं, वो बोलते तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा। हाँ, ला तो सकते नहीं है, बेकार में ऐसे ही बोल देते हैं, चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा या तुम्हारे लिए। उनको प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, व्यक्ति को जो कर सकता है उतना ही बोलना चाहिए। अभी वो बोल दे आपके लिए दुकान से चिप्स ले आऊंगा, ऐसी कुछ बातें बोलनी चाहिए, बड़ी बड़ी बातें, आपके लिए मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ ला सकता हूँ। लेकिन कृष्ण जब कहते हैं तो वो कर भी सकते हैं। तो कृष्ण ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि अरे फूल क्या, पूरा पेड़ तुम्हारे लिए ले आऊंगा। तो श्री कृष्ण अब जब जा रहे थे तो उनको याद आया वो बात कि मैंने कहा था कि पूरा पेड़ ले आऊंगा, तो उन्होंने इसीलिए सत्यभामा को ले लिया। और चौथा और महत्वपूर्ण कारण जो आचार्यगण समझाते हैं कि भगवान नरकासुर का या भौमासुर का वध करने जा रहे हैं, और पूर्व काल में उन्होंने पृथ्वी देवी को, जो कि माता हैं भौमासुर की, उनको वचन दिया था कि मैं आपके पुत्र को नहीं मारूंगा जब तक आप नहीं कहेंगे। वैसे ऐसा भी कहते हैं कि भौमासुर को ब्रह्मा जी का भी वरदान था कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब तक पृथ्वी नहीं चाहेगी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। और उसका कारण यह था कि पृथ्वी जैसा सहनशील कोई है नहीं। तो ब्रह्मा जी का कहने का तात्पर्य यह था कि पृथ्वी इतनी सहनशील है, अगर वो चाहेगी कि तुम्हारा वध हो तब तो फिर समझ लेना कि तुम्हारे वध अनिवार्य है, नहीं तो पृथ्वी सहन करेगी तुम्हारे दुखों को, तुम्हारे द्वारा दिए गए कष्टों को। तो ब्रह्मा जी ने भी ऐसे आशीर्वाद दिया था। तो भगवान को उसको बनाए रखना था, तो सत्यभामा को ले गए, क्योंकि पृथ्वी देवी सत्यभामा की विस्तार मानी जाती है। तो भगवान चाहते थे कि सत्यभामा उनसे कहे कि मारो, तो जो अपना वचन उन्होंने दिया है कि जब तक आप नहीं कहोगे तब तक नहीं मारूंगा, वो वचन पूरा हो जाए। वैसे भौमासुर, इनको एक श्राप भी मिला था वशिष्ठ मुनि से। क्या श्राप था वशिष्ठ मुनि से? उनको श्राप था कि आपको आपके ही पिता मारेंगे, या आप जो भी भगवान उनके पिता माने जाते हैं। पुराणों में वर्णन है कि भूमि देवी और वराह देव से प्रकट हुए भौमासुर, तो इसलिए सत्यभामा को ले गए। और देखिए, भौमासुर भगवान के पुत्र हैं, भूमि देवी के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी असुर, तो ये कैसे हो सकता है? हाँ, अगर कोई असुर कुल में जन्मा है इत्यादि है वो बन जाए ठीक है। तो यह हम लोग कितनी विचित्र बात देखते हैं कि भगवान का पुत्र है वो असुर हो गया, और जो असुर का पुत्र है प्रहलाद वो भक्त हो गया, तो बड़ा विरोधाभास है। और वैसे भी भगवान और भूमि का पुत्र हो तो कैसे स्वयं भगवान का पुत्र असुर हो जाए, ये कैसे हो सकता है। तो प्रभुपाद समझाते हैं श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में प्रभुपाद लिखते हैं इस बात को कि दरअसल भगवान का पुत्र था लेकिन बाणासुर, बाणासुर की भी नगरी वहीं है असम में, वो भी वहीं से है। तो बाणासुर के संग के कारण और फिर आगे चलकर कंस इत्यादि, क्योंकि ये सब इनके सहयोगी बने, इनके संग के कारण वो असुर हो गया। तो भगवान क्या बात दिखलाना चाहते हैं, देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात भगवान इससे बताना चाहते हैं कि भगवान का पुत्र बुरे संग के कारण असुर हो जाता है और एक दैत्य का पुत्र अच्छे संग के कारण भक्त बन जाता है। इसका अर्थ है संग कितना महत्वपूर्ण है, हमें किसका संग लेना चाहिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए ये नरकासुर, इसका वध करना था भगवान को, इसलिए सत्यभामा को साथ में लेकर गए। तो अब भगवान पहुंचे प्राग ज्योतिषपुर, गरुड़ जी ज्यादा समय नहीं लेते हैं, उड़कर पहुंच गए। तो वहां देखा भगवान ने, और युद्ध भी गरुड़ जी पर बैठकर ही कर रहे हैं भगवान, सत्यभामा भी साथ में है। तो भगवान ने देखा कि जो उसका किला है नरकासुर का, बहुत अच्छी तरह सुरक्षित था वो किला। उस किले में चार प्रकार की सुरक्षा की गई थी अलग अलग तरह से, जिससे कोई उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। सबसे पहले चारों जो दिशाएं थीं उसमें बहुत सारे सैनिकों को खड़ा किया हुआ था हर दिशा में, कि कहीं से कोई प्रवेश नहीं कर सके। उसके बाद दूसरा, अगर कोई प्रवेश कर भी जाए तो फिर वहां पर आज की भाषा में कहें तो इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगी हुई थी। आजकल हम लोग इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाते हैं, कोई टच करे करंट लग जाए, तो उस समय किया था भौमासुर ने। तो उसका पूरा जो किला था वो प्रोटेक्टेड था कि अगर कोई इन सैनिकों को मारकर आगे भी आ गया तो फिर करंट से मर जाएगा। फिर तीसरा था उसने पानी, उसका जो चारों तरफ किला था वो पानी, पूरा एक नदी जैसा बनाई हुई थी उसने, नहर, ताकि उस पानी को कोई पार नहीं कर सके, बहुत विशाल नहर थी, उससे प्रोटेक्टेड था। फिर अगर कोई उसको भी पार कर जाए तो एक उसने ऐसा वातावरण बनाया हुआ था जिसमें बहुत खतरनाक गैस फैली हुई थी, मान लीजिए जहरीली गैस फैली हुई है, ऐसा कोई ऐसा पदार्थ था, तो अगर कोई पहले सैनिकों से बच जाए तो फिर करंट से मर जाएगा, करंट से बच जाए पानी में डूबकर मर जाएगा, पानी से बच जाए तो फिर ये गैसें उसको मार देंगी, और उससे भी बचकर अगर अंदर आ जाए तो फिर अंदर पूरी फेंसिंग की हुई थी, बार्ब्ड वायर, उससे कोई अंदर नहीं आ सकता। ये सारी व्यवस्था मुर नाम के राक्षस ने की थी, जो उसका सहयोगी था। भगवान का एक नाम है मुरारी, मुरारी मतलब जो मुर के अरी, मुर के शत्रु हैं उनको मुरारी कहते हैं। तो मुर नाम के राक्षस ने ये सारी व्यवस्था की हुई थी, बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड था। तो भगवान आए, भगवान ने देखा, और फिर भगवान ने जो वहां पर पहले सैनिक थे उनको मार डाला, सबको खत्म कर दिया, और फिर अपने चक्र से ये सब, ये जो स्थान बने थे इलेक्ट्रिक फैंस ये वो सब काट दिया। पानी का तो चिंता ही नहीं, गरुड़ जी पर सवार थे, पानी के लिए क्या टेंशन है। तो भगवान ने ऐसे जब कर दिया, और उसके बाद भगवान ने सब तोड़ने के बाद शंख बजाया अपना। जैसे भगवान ने शंख बजाया, शंख की ध्वनि हुई, तो मुर राक्षस वो नीचे कहीं सो रहा था आराम से, तो वो उठकर आया। मुर राक्षस के पांच सिर थे, 1 2 3 4 5, रावण का आधा होगा शक्ति उसमें, तो पांच सिर थे उसके। और ऐसे वो आया, उठ के अपने सारे सैनिकों के साथ आया, सबको लेकर, और फिर वो युद्ध करने के लिए आया बहुत तेजी से। तो जब वो आया तो उसने देखा, गरुड़ जी को देखा, तो उन्होंने गरुड़ जी को आक्रमण किया, एक अपना ऐसे भाला लेके एक त्रिशूल लेकर फेंका गरुड़ जी की तरफ। तो भगवान ने उसको बड़े आसानी से दो तीरों से काट दिया। फिर उसके साथ जितने सैनिक आए थे उनको मार दिया भगवान ने। और फिर इसने अपना गदा घुमाकर फेंका तो भगवान ने उसकी गदा को काट दिया। तो ऐसे बहुत देर युद्ध हुआ। उसके बाद भगवान ने चक्र लिया और उसकी गर्दन काट दी, उसके पांचों सिर काट दिए। जय श्री शिगो नटराज दयाल नेताई की जय। तो भगवान ने पांचों सिर काट दिए उसके। और इस प्रकार मुर राक्षस वो मारा गया। तो अब आगे जब ये मुर राक्षस मारा गया, जो कि भौमासुर का प्रधान सेनापति था, मान लीजिए सारी सुरक्षा करने वाला, और फिर इसको पता चला, अभी समाचार पहुंचा, तो उस समय मुर राक्षस के 7 पुत्र थे। तो वो 7 पुत्रों ने अन्य एक व्यक्ति को लेकर आक्रमण कर दिया कि अब हम नहीं छोड़ेंगे कृष्ण के ऊपर। वैसे देखा जाए तो 7 पुत्रों के नाम भी बड़े अच्छे अच्छे थे, लेकिन सारे असुर। उनका नाम था ताम्र, एक का नाम था अंतरिक्ष, एक का नाम था श्रवण, एक का नाम था विभवसु, एक का नाम था वसु, एक का नाम था नभवान और एक का नाम था अरुण। देखिए कितने सुंदर नाम, लेकिन सारे असुर। तो इन्होंने आक्रमण कर दिया 7ों ने, और बहुत युद्ध करने लगे भगवान के साथ। भगवान ने फिर उनके साथ जो सेनापति आया था उसको भी मार दिया और 7ों को मार दिया। अब जब भौमासुर को ये सुनाई दिया, भौमासुर से सहन नहीं हुआ, वो आया अपनी सेना लेकर। और साथ साथ विशेष करके वर्णन है वो हाथियों को लेकर आया, कई हाथी जो बहुत शक्तिशाली थे, ऐसे हाथियों को लेकर आया। भागवत वर्णन कहता है मदमस्त हाथी थे, मतलब एकदम मारने वाले सबको। तो बहुत से हाथियों को लेकर आया, अब युद्ध करने लगा भगवान के साथ। और 11 अक्षौणी सेना लेकर आया था, वो अकेला नहीं आया था, 11 अक्षौणी सेना, इतने सारे हाथी, इन सबको वो लेकर आया। तो भूमि देवी का पुत्र है, अब युद्ध करना शुरू किया उसने। तो बहुत युद्ध हुआ उसका, और उसने फिर देखा कि अब गरुड़ जी देख रहे हैं कि स्वामी युद्ध कर रहे। गरुड़ जी ने कहा मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैं ऐसे खड़े खड़े क्या करूंगा, थोड़ी मैं आराम से बैठा रहूंगा। तो उन्होंने देखा इतने सारे हाथी आए हैं, घोड़े आए हैं इस सेना में। तो गरुड़ जी क्या कर रहे, भगवान युद्ध कर रहे थे भौमासुर के साथ, गरुड़ जी ने जाकर हाथियों के ऊपर जाते और अपने पंजों से उनको मारते कभी पंखों से मारते उनको, उनके तो गरुड़ जी हैं कोई साधारण नहीं है, तो कभी पंखों से मारते, कभी वो अपने पंजों से उनको घायल कर देते। ऐसे सारे हाथी और घोड़ों में हाहाकार मच गए, सारे हाथी भागे वहां से, सब भाग गए। और वर्णन है कि गरुड़ जी ने सबको भगा दिया, अकेला भौमासुर खड़ा रह गया वहां पर। और भौमासुर अब फिर युद्ध कर रहा है, बहुत युद्ध हुआ, भगवान को चलाता कुछ ये चलाते। तो उसने फिर गरुड़ जी पर भी आक्रमण किया, लेकिन गरुड़ जी तो कोई साधारण पक्षी है नहीं, तो उसने प्रयास किया उनको भी मारने का, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर बड़ा भयंकर जब युद्ध हो गया, बस ऐसे लग रहा था कि कोई ना कोई किसी को मार देगा, इतने में त्रिशूल उठाया और भागा वो कृष्ण की ओर, और कृष्ण को मारने के लिए त्रिशूल फेंकने वाला फेंक रहा है। और जैसे ही उसने ये किया, सत्यभामा घबरा गई कि हाय कहीं कृष्ण मर नहीं जाएं। उन्होंने तुरंत कृष्ण से कहा मारो मारो इसको। तो कृष्ण ने कहा मैं तो इसका इंतजार कर रहा था क्यों नहीं कहा इतनी देर से, क्योंकि जब तक वो कहती नहीं कृष्ण मार नहीं सकते थे। तो उसने जल्दी कहा मारो मारो, तो श्री कृष्ण ने कहा बस ठीक है, धाड़। कृष्ण ने तुरंत भौमासुर का वध कर दिया। और जैसे ही भौमासुर का वध किया, देवता जो ऊपर से खड़े देख रहे थे, क्योंकि देवता घबराते थे भौमासुर से, उनके घर में जाकर चोरी करके आ गया था, कुछ कर नहीं पाए वो लोग। इंद्र के माता के देखिए, उसको दिखाना था कि मेरी क्या शक्ति है, तो कोई साधारण नहीं, जो राजा है देवराज इंद्र, उनकी माँ के कुंडल उठाकर ले आया, कर लो जो करना है। तो सारे देवता छुपकर खड़े हुए देख रहे थे, जैसे ही मारा गया ऊपर से फूलों की वर्षा करने लगे, वहां गान होने लगा, नृत्य होने लगा, देवता सब प्रसन्न होकर जोर जोर से कहने लगे श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ऐसे भौमासुर को हाँ मार दिया। और अब जब भौमासुर मर गए तो भूमि देवी आई, उनकी माता आई और उन्होंने अदिति के कुंडल वापस किए, छत्र वापस किया, सब कुछ वापस कर दिया जो भी वो चुरा कर लाया था। और उस समय भूमि देवी ने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं की। भूमि देवी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप शंख चक्र गदा पद्म इन चीजों से आप विभूषित रहते हैं, ये आपकी शोभा है। और फिर उन्होंने कृष्ण के तुलना कमल से की। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। यही प्रार्थना कुंती महारानी ने की है। भागवत के पहले स्कंद में आठवें अध्याय में कुंती महारानी भी यही प्रार्थना करती हैं, सेम एक शब्दशः यही प्रार्थना है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते नम पंकजांग्रिये। तो उन्होंने प्रार्थना की, भूमि देवी क्या कह रही हैं, नमः पंकज नाभाय, इसका एक अर्थ होता है कि आपकी नाभि कमल के समान है, दूसरा अर्थ होता है कि आपकी नाभि से कमल प्रकट होता है। नमः पंकज नाभाय, आप वो हैं जिनकी नाभि से कमल पुष्प प्रकट होता है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने, अर्थात आप हमेशा माला पहनते हैं, किसकी, फूलों की, कौन से फूल, कमल के पुष्प। तो नमः पंकज मालिने, कि आप हमेशा कमल के पुष्पों की माला पहनते हैं। और आगे वो क्या कहते हैं कि आपके जो चरण कमल हैं, नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये, पंकजांग्रिये मतलब आपके जो चरण कमल हैं उनको, जो आपके भक्त हैं वो आपकी पूजा करते हैं उन चरण कमलों की, और उसके द्वारा जब वो आपकी पूजा करते हैं चरण कमलों की, तो आप भक्तों के हृदय में जो कमल के समान हैं, अर्थात आपके चरण कमल के समान हैं और भक्तों का हृदय भी कमल के समान है। और वो जब आप अपने चरणों को भक्तों के कमल रूपी हृदय में स्थापित करते हैं, तो ऐसा वो वर्णन करने लगे। और उन्होंने फिर आगे कहा कि जितना सौंदर्य है, जितना बल है, जितना यश है, जितने भी ऐश्वर्य हैं इस जगत में, जितना त्याग, जितना वैराग्य है, वो सब आपसे आता है और वो सब आपके पास है। हर कुछ, सब चीज आपके पास से आती है। और वो कहती हैं कि ये जो ब्रह्मा, ये जो शिव जी, ये महेश जो हैं, ये स्वतंत्र नहीं हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वतंत्र नहीं हैं। क्यों, वो भी जो सृष्टि करते हैं वो केवल आपके ही शक्ति के कारण उसको कर पाते हैं। और वो कहते हैं कि आप ही रजोगुण के द्वारा ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं और आप सृष्टि की रचना करते हैं। सत्वगुण के द्वारा विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, पालन करते हैं। तमोगुण के द्वारा आप शिव के रूप में इस सृष्टि का संहार करते हैं। तो सब कुछ आता आपसे ही है, आपसे कोई परे नहीं है। तो ऐसी प्रार्थना करने के बाद उन्होंने भौमासुर के पुत्र को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा यह है भागदत्त और ये बहुत डरा हुआ है, ये सब देखकर, ये जो भयंकर, दरअसल जब कृष्ण ने युद्ध किया था तो क्या स्थिति हुई थी, इतने काटे थे, आप सोचिए 11 क्षौणी सेना को मारा होगा, उससे अन्य भी जो सैनिक थे, तो हर जगह सर पड़े हुए हैं, हाथ पड़े हुए हैं, जंघाएं पड़ी हुई हैं, सब कटे हुए पड़े हुए हैं। तो भूमि देवी कहने लगी ये बड़ा घबरा गया है, ये सब देखकर बहुत डर रहा है, आप इसके ऊपर अपनी कृपा कीजिए, इसको थोड़ा सांत्वना दीजिए। तो फिर श्री कृष्ण ने कहा चिंता नहीं करो भागदत्त से, कोई तुम्हें खतरा नहीं है। मतलब भगवान, वो लग रहा था भागदत्त को कि अब मुझे मारेंगे, सबको तो मार दिया, मूर को मार दिया, मेरे पिता को मार दिया। भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, तुम्हें नहीं मारेंगे, जिसको मारना था मार दिया। तो फिर श्री कृष्ण ने महल में प्रवेश किया भौमासुर के, तो वहाँ 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाकर रखा था। ये अलग अलग जगह से प्रश्न आता है कि इतनी सारी राजकुमारियों को बंदी बना रहा था, क्या कृष्ण को सूचना नहीं पहुंची थी? बहुत सारे और इतने बड़े बड़े उस समय हस्तिनापुर में राज्य कर रहे थे, उनको सूचना नहीं पहुंची कि कुछ नरकासुर कुछ कर रहा है? सूचना इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि कृष्ण इंतजार कर रहे थे सब इकट्ठे हो जाएं, फिर जाकर मैं उनको लेकर आ जाऊंगा। तो अब श्री कृष्ण आए, देखा 16,100 रानियां हैं। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं एक स्थान पर कि श्री कृष्ण ने, नेक्स्ट ऑफ डिवोशन में शायद प्रभुपाद लिखते कि श्री कृष्ण ने जब उनको देखा, सारी 16,100 राजकुमारियां, श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, मुक्त कर दिया उनको, कहा जाइए आप लोग अपने अपने घर, आप मुक्त हैं अभी, चिंता नहीं कीजिए। तो भागवतम वर्णन करता है कि जैसे ही श्री कृष्ण ने प्रवेश किया और इन राजकुमारियों ने देखा, हर एक के हृदय में कृष्ण से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो गई, बड़ी तीव्र इच्छा। तो श्री कृष्ण ने इनको मुक्त किया और कहा कि ठीक है आप अपने अपने घर जाइए, हम अपनी सेना भेज देते हैं, वो आपको छोड़कर आएंगे ताकि आपको कोई कष्ट ना हो। तो उन सारी राजकुमारियों ने श्री कृष्ण से कहा कि देखिए, हम इतने समय से इस असुर के यहां कैद हैं, और साधारणता अगर एक कुलीन स्त्री एक दिन भी अगर बाहर रह जाए अपने घर से तो फिर कोई उससे विवाह नहीं करता है, और हम तो काफी लंबे समय से यहां पर कैद हैं और वो भी इस असुर के यहां। अब अगर हम वापस भी जाएंगी तो हमसे विवाह कौन करेगा, और हम जीवन भर चिंता में रहेंगे, हमारे माता पिता चिंता में रहेंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा आप हम सबसे विवाह कर लीजिए। और श्री कृष्ण ने, प्रभुपाद लिखते हैं, श्री कृष्ण ने बहुत आराम से स्वीकार कर लिया, ओके यस वेरी गुड। तो श्री कृष्ण ने स्वीकार किया और उन्होंने उस समय सेना की टुकड़ी के साथ भेज दिया इन 16,100 रानियां राजकुमारियों को द्वारका, कि आप द्वारका जाइए फिर वहां पर हम आपसे विवाह करेंगे। तो यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें सीखने मिलती है कि कभी कभी लोग दोषारोपण करते हैं कृष्ण के ऊपर कि कृष्ण ने इतने विवाह किए, 16,108 विवाह किए, 8 विवाहों की वर्णन हम पहले सुन चुके हैं, अब 16,100। तो क्या कृष्ण बड़े कामी पुरुष थे इसलिए उन्होंने विवाह किए इतने सारे? तो यहां हम लोग देखते हैं रुक्मिणी से विवाह किया क्योंकि उनकी इच्छा थी, सत्यभामा से, जाम्बवती से, जो भी विवाह हम लोग देखते हैं। और यहां 16,100 विवाह देख रहे हैं तो वहां क्या हो रहा है, वहां इच्छा किसकी है? उन राजकुमारियों की। और कारण क्या है? उनके मान सम्मान को बनाए रखना, ये कारण है। कारण ये नहीं है कि श्री कृष्ण बड़े कामी हैं, वो चाहते थे कि मान सम्मान बना रहे इन राजकुमारियों का, तो इस दृष्टि से उन्होंने विवाह किए। तो श्री कृष्ण ने 16,100 विवाह उन राजकुमारियों के मान सम्मान को बनाए रखने के लिए किया। तो हमें ये देखना चाहिए श्री कृष्ण कामी नहीं है, अगर वो नहीं करते तो इनकी कोई, और श्री कृष्ण मना कर सकते थे कि मुझे, मैं कैसे कर सकता हूं, पहले ही मेरे 8 पत्नियां हैं बस, और व्यवस्था नहीं है, इतने महल कहां से बनाऊंगा। श्री कृष्ण ने तुरंत हां की उनके मान सम्मान को बचाने के लिए। तो ऐसे श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया और फिर वहां से श्री कृष्ण स्वर्ग चले गए। उन्होंने जो कुंडल इत्यादि लिए, कहा ठीक है चलो वापस करके आते हैं। तो श्री कृष्ण सत्यभामा को लेकर, अब श्री कृष्ण चाहते तो इंद्र को वहीं बुला सकते थे, कुंडल लिए वहीं इंद्र को कहते, इंद्र आ जाते वहीं दे देते, फिर स्वर्ग क्यों गए? सत्यभामा को घुमाना था, थोड़ा पति का कर्तव्य होता है पत्नियों को घुमाएं, पत्नी को ऐसे इधर उधर कहीं पर थोड़ा ले जाना चाहिए, बगीचे में इत्यादि, तो ले गए स्वर्ग में, देखो कितने बगीचे हैं, ताकि वो पारिजात वृक्ष को भी देख ले। तो श्री कृष्ण गए, उन्होंने उन कुंडल को वापस किया, छत्र वापस किया, इत्यादि देवताओं ने बड़ा आदर किया। इंद्र ने दंडवत प्रणाम किया, उनका जो मस्तक था उन्होंने भगवान के चरणों में लगाया, बहुत धन्यवाद किया भगवान को कि आपकी वजह से हम सदैव सुरक्षित रहते हैं। तो ऐसे सब कर कर अब भगवान वापस आ रहे थे, तो सत्यभामा ने देखा कि वहां पारिजात वृक्ष है। तो सत्यभामा ने कृष्ण से कहा, याद है आपने मुझको कहा था? कृष्ण ने कहा बिल्कुल याद, तो मैं ले लूं? बोले हाँ ले लो। तो सत्यभामा ने वो वृक्ष उखाड़ लिया पूरा, फूलों का वृक्ष, पारिजात फूलों का, ताकि नीचे जाकर अपने बगीचे में लगा सके पृथ्वी पर जाकर। तो जब उन्होंने वृक्ष उखाड़ा, अब तक तो सारे देवता इंद्र आदि बड़े आराम से खड़े आदर सम्मान कर रहे थे, जैसे ही उन्होंने वृक्ष उखाड़ा सारे देवता खड़े हो गए सामने, इंद्र खड़े हो गए, ऐ आप ले जा नहीं सकते। अरे अभी तक कृष्ण चुप बैठे थे। सत्यभामा ने सोचा ये क्या हो गया। तो सत्यभामा ने कहा क्यों नहीं ले जा सकते? उन्होंने कहा ये स्वर्ग का है, स्वर्ग की चीजें पृथ्वी पर नहीं जाती हैं, ये नियम है, तो आप नहीं ले जा सकते। तो अब श्री कृष्ण एक अच्छे पति की तरह फिर से, देखिए अब इन लीलाओं में, इस अध्याय में, अगले अध्याय में भगवान एक अच्छे पति की भूमिका निभा रहे हैं। तो अब उन्होंने देखा कि अरे मेरे पत्नी का विरोध कर रहे हैं, ये वृक्ष ले जाना चाहती है। श्री कृष्ण ने युद्ध किया, और देखिए इंद्र अभी अभी जो चरणों में गिरा था उसने भी युद्ध किया भगवान से, नहीं ले जाने दूंगा। और फिर बड़ा युद्ध हो गया, और फिर स्वाभाविक है भगवान ने बड़ी आसानी से इनको हरा दिया। प्रभुपाद लिखते हैं कि ये इंद्र का एक बड़ा स्वार्थी स्वभाव था। प्रभुपाद कहते हैं जो स्वार्थी व्यक्ति होता है वो कभी किसी अन्य को आदर नहीं दे सकता। तो ये स्वार्थ था कि अभी अभी कृष्ण आपके लिए इतना बड़ा कार्य कर कर लाए हैं, और अगर एक वृक्ष उखाड़ लिया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उसने युद्ध किया और कृष्ण ने परास्त किया उन सबको, और फिर लेकर आए। तो यह हम लोग देखते हैं कि कैसे ऐसे हो सकता है। अरे हमारे, मान लीजिए हमारा घर है, कोई हमें लाकर, हमें बहुत चोरी हुई चीज, सोना ये वो सब देते हैं, और जाते जाते उनको एक पेड़ पसंद आता है हमारे गार्डन का, और वो कहते हैं इसको ले जाओ। हम कह आप मत क्यों ले जा रहे हैं, हम इसको पहुंचाने के लिए आते हैं आपके साथ, क्योंकि आपने इतना बड़ा कार्य किया हमारे लिए। लेकिन यहां इंद्र ने अपोज कर दिया। प्रभुपद कहते स्वार्थ है, तो स्वार्थ से निस्वार्थ की ओर जाना ये हमें भक्ति सिखलाती है। एक वैष्णव में तीन गुण बहुत महत्वपूर्ण है, भक्ति तो है ही, अदरवाइज वो वैष्णव कहलाते ही नहीं है। भगवान के प्रति समर्पण, भक्ति, ये सारे गुण तो वैष्णव में हैं, लेकिन तीन गुण, और वो हैं निर्भयता, नम्रता और निस्वार्थ भावना। तो नम्रता नहीं है, निर्भयता नहीं है, निस्वार्थ भावना नहीं है, तो फिर वैष्णव नहीं कहलाए जा सकते। तो निस्वार्थ होना चाहिए। क्या है निस्वार्थ भावना? निस्वार्थ भावना का पहला लक्षण होता है कि जो हमें भक्ति प्राप्त हुई है उसको अन्यों को देना, उसके लिए चिंता नहीं करना, बस जो हमें प्राप्त हुआ अन्यों को देने के लिए चिंतित रहना, ये निस्वार्थ भावना है। अपने सुविधा के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने शरीर के लिए चिंता करना, ये स्वार्थ है। लेकिन दूसरों को कृष्ण भावनामृत देने के लिए चिंता करना, यह निस्वार्थ है। और इसके लिए हमें कोई शास्त्रों में जाने की जरूरत नहीं है उदाहरण देखने के लिए, कि हम शास्त्रों में जाएं ढूंढे कैसे निस्वार्थ। शास्त्रों में असंख्य उदाहरण है निस्वार्थ भावना के, लेकिन हम प्रैक्टिकली व्यवहारिक आज भी उस उदाहरण को देख रहे हैं। परम पूज्य भक्ति चारु स्वामी महाराज ये ऐसे समय में भी अमेरिका इसलिए गए, जाने के पहले वो बतला रहे थे, इसलिए गए क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत अन्यों को देना चाहते थे। उनको चिंता थी कि मेरा कर्तव्य है, मुझे आदेश है श्रील प्रभुपाद का, और इसलिए ये कृष्ण भावनामृत मैं अन्यों को देना चाहता हूं। मैं एक जगह बैठ नहीं सकता क्योंकि इससे मेरी सेवा पूरी नहीं होगी। और इसीलिए वो ऐसी जगह पर गए। दुर्भाग्य से बीमार हैं और इस समय अभी हम सुन रहे हैं कि धीरे धीरे स्थिति उनकी अच्छी हो रही है और सारे जगत में सभी भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी और काफ़ी लंबे वर्षों तक इस पृथ्वी पर उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। और हम सबका विश्वास है कि नरसिंहदेव, चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण हम सब पर कृपा करेंगे और महाराज बहुत जल्द ठीक होकर इस भावना को फैलाएंगे। लेकिन साथ ही साथ हमें इस घटना से बहुत कुछ सीखना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात निस्वार्थ भावना, कि जहां अपनी चिंता ना करते हुए हमें निस्वार्थी बनना है। तो अगर हम महाराज के प्रति, जिन्होंने इतना बड़ा खतरा लिया केवल कृष्ण भावनामृत को फैलाने के लिए, अगर सही कृतज्ञता, सही प्रेम उनके प्रति दर्शाना है, तो आज की स्थिति में हमें निस्वार्थी बनना होगा, उनके उस भाव को स्वीकारना होगा। निस्वार्थी बनने का अर्थ है बिना हिचक के जो हमें भक्ति मिली है, जो ज्ञान मिला है, दीजिए दूसरों को, बांटिए, रखिए मत अपने पास। जैसे पूर्व काल में ऋषि मुनि जो उन्हें मिलता था वो दे देते थे, गुरु द्रोणाचार्य जो सीखा उन्होंने वो सब सिखा दिया अर्जुन को, कोई रहस्य नहीं रखा, अश्वत्थामा को सिखा दिया, कोई रहस्य नहीं रखा। इसी तरह हम सबको जो हमें प्राप्त हुआ है गुरुजनों से, आचार्यों से, उसको आगे दे देना चाहिए। ये सच्ची निस्वार्थ भावना है। वैसे निस्वार्थ भावना को कई तरह से और समझाया जा चुका जा सकता है, लेकिन हम सबके लिए निस्वार्थ भावना इस समय यही है कि हम अन्यों को कृष्ण भावनामृत देने की चिंता करें, हमेशा चिंता में रहें कि क्या मैं कर सकता हूं, योजनाएं बनाएं, खाली नहीं बैठे। योजना इसकी नहीं बने कि कैसे मैं धन कमाऊं, योजना इसके लिए मत बनाइए, वो धन तो आपके भाग्य में लिखा वैसे ही आ जाएगा। योजना इसके लिए नहीं बनाइए कि मेरा घर कैसे बन जाए, योजना बनानी चाहिए कि कृष्ण का घर कैसे बने। योजना ये मत बनाइए कि मैं धन कैसे इकट्ठा करूं, योजना ये बनाइए कि इस धन का उपयोग भगवान की सेवा में कैसे करूं। योजना ये मत बनाइए कि किस प्रकार मैं इस बीमारी से बचकर बहुत आराम से अपने घर के अंदर बंद रहूं, लेकिन योजना ये बनाइए कि इस स्थिति में भी कैसे मैं अन्यों को कृष्ण की भक्ति प्रदान कर सकूं। ये निस्वार्थ भावना। तो हमारे आचार्य गण, हमारे गुरुजन, हमें ये निस्वार्थ भावना के भाव को प्रकट करा रहे हैं, अपने उदाहरण से दिखला रहे हैं। शिला प्रभुपाद ने दिखलाया निस्वार्थ भावना। 70 वर्ष की उम्र में पहली बार अमेरिका जाना और फिर वहाँ एक आंदोलन को प्रारंभ करना, अकेले संघर्ष करते हुए, निस्वार्थ भावना का पूर्ण प्राकट्य है। हम लोग आज प्रचार करने जाते हैं उन जगहों पर जहां सारी व्यवस्था है। प्रभुपाद गए प्रचार करने, व्यवस्था उनको पता नहीं था जब वो उतरे हैं कि लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है। ये निस्वार्थ भावना का पूर्ण प्राकट्य है। एक ही इच्छा लेकर गए थे प्रभुपाद हृदय में, मुझे भक्ति प्रदान करनी है, बस कैसे भी हो इन लोगों को भक्ति प्रदान करनी है। ये निस्वार्थ भावना है। तो कभी कभी हम लोग निस्वार्थ भावना को सोचते हैं कि बस अपने लिए कुछ नहीं सोचना, ये भी निस्वार्थ भावना है, या फिर हमेशा तपस्या में लगे रहना इत्यादि। लेकिन निस्वार्थ भावना का पूर्ण प्राकट्य है कृष्ण भावना मृत को अन्यों को देना। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप स्वार्थी हैं। फिर आप चाहे कितने बड़े तपस्वी हों, फिर आप चाहे कैसे भी रहते हों, फिर आप चाहे कितने बड़े वैरागी हों, लेकिन आपका वैराग्य, आपकी तपस्या, आपका ज्ञान अधूरा है अगर कृष्ण भावनामृत से जुड़कर उस कृष्ण भावनामृत को अन्यों को नहीं दे रहे। इसलिए हमारी प्रार्थना है आप सबसे, जहां है जिस स्थिति में है वहां रहकर निस्वार्थी बनिए। प्रभुपाद की कृपा से, उनके अनुयायियों की कृपा से हमें ये गुण मिल रहे हैं। नम्रता देखने को मिलती है, निस्वार्थ भावना देखने मिलती है। कल हम लोग परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज से सुन रहे थे और उन्होंने बोलना प्रारंभ किया और प्रारंभ में ही उन्होंने कहा कि आप सब बड़े शहर के लोग हैं, नोएडा के भक्तों को संबोधित कर रहे थे, आप सब बड़े शहर के लोग हैं और फिर भी आप मुझे प्रेम देते, मैं तो एक छोटे से गांव से गांव का व्यक्ति हूं। इसे कहते नम्रता, ये कोई दिखावा नहीं था। तो इसलिए प्रभुपाद जी के अनुयायी हम लोगों को नम्रता, निस्वार्थ भावना और निर्भयता सिखला रहे हैं कि प्रचार कीजिए, भक्त बनिए। कल महाराज भी यही कह रहे थे लोकनाथ महाराज कि आपको मिला है, आप प्रसन्न हो कि नहीं, सुखी हो कि नहीं, अब दूसरों को दो। बहुत सुंदर बात उन्होंने कही कि अब आपको करना है। जैसे मानो जैसे प्रभुपाद ने उन सबको कहा होता कि मैंने कर दिया, अब आपको आगे बढ़ाना है, और उन्होंने इतना बढ़ा दिया। प्रभुपाद ने 108 मंदिर बनाए थे, इस समय इस्कॉन के 600 से अधिक केंद्र हैं। ये केवल प्रभुपाद जी के शिष्यों की कृपा है और अब हमारा कर्तव्य है कि हम उनके मार्ग निर्देशन में आगे चलकर जब तक ये पीढ़ी समाप्त हो जो इस समय है, अर्थात पहले प्रभुपाद ने 108 बनाए, उनके बाद जो पीढ़ी आई उसने 600 से अधिक केंद्र बना दिए, अब जो पीढ़ी है ये अपना समय काल समाप्त करने से पहले कितने मंदिर बना दें ये हमारे ऊपर है। हजारों मंदिर होने चाहिए प्रभुपाद की सेवा के लिए। तो निस्वार्थ भावना है कि किस तरह हम इस चीज को आगे बांटें, स्वार्थी ना बने। और कृष्ण, प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण को ये स्वार्थ पसंद नहीं है, ये इंद्र का स्वभाव पसंद नहीं आया, इसलिए युद्ध किया और उनको उन्होंने परास्त किया। तो आज वचन लेना चाहिए हम सबको, स्वार्थी जीवन से निस्वार्थी जीवन की ओर बढ़ें, अपने उद्धार से अधिक अन्यों के उद्धार की चिंता करें, अपनी सुविधाओं से अधिक अन्यों को कृष्ण भक्ति प्रदान करने की चिंता करें। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो ऐसे श्री कृष्ण ने परास्त किया और फिर वापस द्वारिका आए, और ऐसा वर्णन है कि बस द्वारिका में आए थे कि उस समय जो वहां पर सब उपस्थित ज्योतिषी इत्यादि थे, उन्होंने कहा कि अभी अभी बस मुहूर्त अभी है विवाह करने का, तुरंत। अरे कृष्ण ने कहा इतनी लंबी फ्लाइट से आया हूं मैं, कितनी लंबी फ्लाइट होगी, इसी जगत में हम लोग जाते हैं, जगह पर 18-18 घंटे की फ्लाइट अमेरिका हो जाती है स्वर्ग से आने में। वो तो यहां से गए थे द्वारिका से आसाम, आसाम से स्वर्ग, स्वर्ग से आए। तो श्री कृष्ण ने कहा होगा अरे थोड़ा तो इंतजार करो, कि नहीं अभी बस मुहूर्त अभी है, अभी विवाह करना है। श्री कृष्ण का ठीक है। तो 16,100 पंडाल बने भगवान के विवाह के लिए। ऐसा नहीं था कि भगवान भाग रहे थे। 16,100 पंडाल बने, बहुत ऐश्वर्यशाली, उसमें सारी राजकुमारियां बैठी, उनके माता पिता आए हुए थे सब जगह से, जहां जहां से थे, और भगवान ने अपना विस्तार किया 16,100 रूपों में, एक ही समय एक ही मुहूर्त में सबसे विवाह किया भगवान ने। और इतना भी वर्णन है कि भगवान ने तो किया लेकिन देवकी, वसुदेव जितने थे सब, हर विवाह पंडाल में हर कोई उपस्थित था। कैसे करते नहीं तो भगवान विवाह, माता पिता तो होने चाहिए। अब माता पिता थोड़ी भागते रहेंगे 16,100 जगहों पर धर 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 धर, तो उन्होंने भी विस्तार कर लिया। तो ऐसे श्री कृष्ण का विवाह हुए 16,100 विवाह। ये बड़ी अद्भुत चीज है, एक ही समय पर एक ही मुहूर्त में एक साथ विवाह कर लिए। अगर कोई कृष्ण पर लांछन लगाता है कि कृष्ण ने क्यों इतने विवाह किए, तो आप भी कर सकते हो अगर आप 16,100 विवाह एक साथ एक ही मुहूर्त में कर सको, अलाउड है आपको, फिर आप कीजिए भोग। पहले तो 16,100 स्त्रियां ढूंढ लो, वही नहीं मिलेंगी आपको। कृष्ण के लिए तो 16,100 भी कम थी, और बहुत सारी उस समय स्त्रियां चाहती थी विवाह करना। वैसे ये 16,100 राजकुमारियां, आचार्यगण समझाते हैं कि ये गोपियों के विस्तार हैं। तो वो गोपियां जो कृष्ण आ गए और फिर गोपियां जो उनसे विवाह नहीं कर पाई, तो ऐसा वर्णन है कि उन्होंने अगला स्वरूप राजकुमारियों का लिया, या कृष्ण के पहले भी बहुत सी ऐसी गोपियां थी जो चाहती थी, तो उनका अब रूप इस रूप में प्रकट हुआ। तो श्री कृष्ण ने विवाह किए और हरेक के लिए 16,100 रानियों के लिए महल बनवाए। देखिए, अगर कृष्ण की तरह भोग करना है तो ये भी कीजिए। व्यक्ति विवाह करता है, एक ही घर में दो दो तीन तीन पत्नियों को रखता है, कैसे रह सकता है। जय श्री श्री गौर नटराज दयाल निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो कीजिए 16,100 विवाह एक साथ एक ही मुहूर्त में, बनाइए 16,100 महल, और उन महलों में एक साथ रहिए। प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसा नहीं था कि श्री कृष्ण को पाने के लिए एक एक रानी को 16,100 दिनों तक रुकना होता था। भगवान हर जगह हर महल में थे, और रानियां सेवा कैसे कर रही थी। हालांकि बड़ी बड़ी रानियां थी, हजारों इनके सेवक थे, लेकिन ये कैसे सेवा कर रही थी। खुद व्यक्तिगत सेवा करती थी कृष्ण की, ऐसे नहीं कि नौकरों को बोल दिया भाई आए चलो कृष्ण देखो फ्रिज में क्या है निकाल के ला के दे दो। नहीं, वर्णन किया गया है कि जब श्री कृष्ण आते थे थके हुए, तो रानियां खुद जाकर स्वयं उनका स्वागत करती थीं, उनकी पूजा करती थीं, उनके चरण धोती थीं। फिर उनको जब वो थक जाते थे तो बड़े प्रेम से उनके पांव दबाती थी, उनके चरणों को दबाती थी। खुद स्वयं चाहती तो बहुत दास दासियां थी, उनको बोल सकते थे आप करो, लेकिन वो खुद बैठकर, ये रानियां हैं, और वो खुद श्री कृष्ण के चरणों को दबाती थी। श्री कृष्ण के लिए भोजन लाना, उनको खिलाना, उनको उनका श्रृंगार करना, वस्त्रों को लाना। देखिए, ये सब तो साधारणतः नौकरों से, आज भी हम देखते हैं कि अगर कोई आदमी के पास बड़ा अमीर हो जाता है तो ये सब काम नौकर करते हैं, कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करके रखना, लाना, ये सब वो नौकर करते हैं। जो पत्नियां हैं वो सब बोलती हैं हमारा काम नहीं है, लेकिन यहाँ खुद करती थी। सुने बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं ये आदर्श पारिवारिक जीवन है, कि जब भगवान आते थे स्वागत करना, चरण धोना, उनको बिठाना, थक गए हैं लेट जाते थे भगवान की थके हैं तो उनके चरणों को दबाया करती थी बैठकर खुद स्वयं। और ऐसे कई कार्य भागवत में वर्णन है कि किस तरह वो किया करती थी। भगवान का श्रृंगार करना, भगवान को चामर करना, पुजारी जी करते हैं चामर, तो भगवान को चामर करना ये भी उनकी पत्नियों का कार्य था, खुद करती थी। तो ये क्यों दिखाता है, क्यों कर रही है खुद, ये दिखाने के लिए कि अपनी सेवा हमें खुद करनी चाहिए। अपनी सेवा अर्थात हमारी जो भगवान के प्रति सेवा है उसको दूसरे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये अवसर बहुत बहुत भाग्य से मिलता है। इसलिए भगवान की सेवा को छोड़ना नहीं चाहिए कि हमारी सेवा हमने दे, अरे मैं नहीं करूँगा आप करो, तो खुद कर रही हैं। तो जब हमें अवसर मिले डीटी वर्शिप, ये इन सारी सेवाओं को करने का अवसर है। जो रानियां द्वारका में कर रही थी कृष्ण के, वो आप घर में रहकर डीटी वर्शिप में कर सकते हो। कैसे, क्या क्या वर्णन है, रानियां पूजा किया करती थी भगवान की, आप पूजा करते हो, भगवान के चरणों को धोया करती थी जब हम लोग अभिषेक कराते हैं भगवान को, भगवान के वस्त्र पहनाती थी, श्रृंगार करती थी, हम लोग उसको वस्त्र पहनाते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं उनको, भगवान को, भगवान के लिए भोजन लगा लाती थी, उनको खिलाती थी, पुजारी भोग लगाते हैं भगवान को, उनके चरणों को दबाती थी। और ये नियम है कि जब भगवान को रात को सुलाया जाता है, जब भी सुलाया जाता है, तो पुजारी जब भगवान को बिस्तर पर लिटा देते हैं सोने के लिए, तब लाइट बंद करने से पहले चरण दबाते हैं, उनके चरणों की सेवा की जाती है, और फिर पुजारी को जाना चाहिए, तब भगवान सोते हैं। ऐसे नहीं भगवान को सुलाया जाता, कई कई जगहों पर बात अलग है, छोटे केंद्र में तो। लेकिन जहाँ भी मंदिर हमारे स्थापित हैं वहाँ पुजारी रात को भगवान को जब लिटा देते हैं और चादर उड़ा देते हैं, उसके बाद उनके चरणों की सेवा करते हैं, का थोड़ी देर तक उनके चरण दबाते हैं, उनको कृष्ण बुक से पढ़कर सुनाते हैं। आपको आश्चर्य होगा हमारे मंदिरों में नियम है कि भगवान को सुलाने से पहले उनको कृष्ण बुक का एक अध्याय या थोड़ा बहुत पढ़कर सुनाया जाता है। क्यों? कृष्ण सोते समय वृंदावन की लीलाओं को सुनकर सोते हैं, बड़ा आनंद आता है कृष्ण को, तो कृष्ण को सुनाया जाता है लीलाएं। तो ये सारी चीजें जो रानियां कर रही हैं, चामर किया करती थी, उनको श्रृंगार कर रही, सब डीटी वर्शिप में होता, और रानियां व्यक्तिगत कर रही हैं। तो इसीलिए इस तरह से भगवान ऐसे द्वारका में रहे। और अब अगले अध्याय में और थोड़ा वर्णन आएगा कि कैसे भगवान एक अच्छे पति की भूमिका निभाते हैं। तो यार रुक्मिणी से हंसी मजाक करते हैं, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में हंसी मजाक भी बहुत ज़रूरी है। तो कैसे करते हैं कृष्ण, ये अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।